अब इसके बाद अपने वक्त से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करो।
क्या मतलब? मेरा काम खत्म है क्या? आफाक मान जाएगी क्या?
इसकी परवाह मत करो कि वो इजाजत देंगे कि नहीं, बल्कि इसकी फिक्र करो कि तुम्हारे जाने का वक्त आ जाए और तुम अपने शाकियों को राजी न कर पाओ।
अरे तुम मुझे क्या करना चाहिए? या तुम उसे झगड़ा करते हो या मुझे नाउम्मीद करते हो। मैं भी तो एक मुर्दे की तरह पड़ा हूं, मैं क्या कर सकता हूं?
तुम्हारी पूरी जिंदगी में मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार इस बार की तरह के नहीं चाहा, कोई बहाना तराश लिया और अपना ही काम किया।
तो प्लीज मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो तो गुदर्स था कि मैंने उसकी इतनी मदद की लेकिन उसने मुझे इतना सुनाया, और इधर तुम हो जो हर लम्हे मेरे लिए शाकी तलाश किए जा रहे हो। अरे जल्दी मेरा फैसला करो, तुम फरिश्ते हो, मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तो फिर क्यों?
कब तक एक ही गलती दोहराए जाओगे हाजी?
लेकिन मुझे जहां तक याद है किसी के साथ बुरा नहीं किया।
याद नहीं है या कहने से डर लग रहा है?
मुझे तो कुछ भी याद नहीं है।
मेरी आंखों में देखो। अपने माँ बाप के साथ क्या किया कि वो तुमसे मुंह फेर रहे हैं?
मैंने कुछ नहीं किया।
कुछ नहीं किया?
नहीं।
तो फिर वो क्या है तुम्हारे पीछे?
कहाँ चले गए?
ये वो आओ नाला है जो तुम्हारे साथ है।
मैं तुमसे राजी नहीं हूंगा।
कहा हो?
मैं तुमसे हरगिज राजी कहा नहीं हूँ। बिल्कुल राजी नहीं।
कहा हो? मेरी मदद करो, खुदा के वास्ते मेरी मदद करो, मुझे इतना अजाब मत झेलने दो।
फता, ये अजाब तुम्हारे दिल में है, उस कल्ब में जो अभी जिंदा है और धड़क रहा है। मैंने कहा था इससे जान नहीं छुड़ा सकते।
मैं मानता हूँ मैंने बुरा किया, मैंने अपने वालिद के साथ जुल्म किया, मैंने उनकी वसीयत पर अमल नहीं किया। इसका इजाला करूंगा, जो कहोगे करूंगा। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे इतना अजाब ना दो, मुझे इतना अजाब ना दो।
तुमने अपने माँ बाप के साथ क्या किया कि वो तुमसे मुंह फेर रहे हैं? तुमने खुद अपनी वालदैन की वसीयत पर अमल किया? हाजी तुम खुद अपने वालदैन के साथ वही अमल नहीं किया जो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ कर रहा है? दुश्वार था हाजी।
शैतान के स्याह दिल पर लानत, अब ये क्या था?
तुम्हारे माँ बाप के आहो नाले और जिन पर तुमने जुल्म किया और उनके हुकूक को ठुकराया, उनकी बद्दुआएं। और याद रखो कि अगर उनकी रिजायत हासिल न कर पाए तो जो बाद में तुम्हारे साथ होगा इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
खुद तुम्हारे अमाल का नतीजा है। इंशाल्लाह इनकार तो नहीं करना चाहते?
अरे मैंने किसी वक्त एक गलती की थी, अब तो देख ही रहे हो गधे की तरह कीचड़ में फंस गया हूँ। तुम क्यों आग भड़का रहे हो? अभी तक तुम्हारा काम समझ में नहीं आया? तुम रहमत के फरिश्ते हो, अजाब के हो, तुम हो कौन?
मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ।
हाँ तुम बस यही कहते रहो, कब से देख रहा हूं।
मालूम है कि मैंने ये हाथ कितनी बार तुम्हारी तरफ फैलाया और तुमने इसे वापस कर दिया। अब लड़ाई झगड़े और अकड़ने का वक्त नहीं है, मुझे अपनी मदद करने दो।
अगर आप मदद करना ही चाहते हैं तो अचानक कहां गायब हो गए थे? देखा नहीं कैसे परेशान हो गया था?
मैं तुम्हारे पास ही था लेकिन तुम मुझे नहीं देख पा रहे, चूंकि वहां कुछ और देखना चाहिए था। तुमको देखना चाहिए था कि अगर इनकार किया और भाग लिए और दिए हुए मौके का फायदा नहीं उठाया तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ये मौका किसी को नहीं मिलता है फत्ता साहब।
अरे मैं तो बाद में पशमान हो गया था, मेरे बस में जो था वो मैंने किया। इतनी दुआ और इबादत, इतनी खैरात वैरात, इस गलती का इजाला नहीं है क्या?
नहीं हाजी, तुम्हारी गलती ये है कि अपने माँ बाप की नाराजगी को हल्का लिया है। उनकी बद्दुआएं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रही हैं। इस वक्त किसी भी सूरत उनकी रजायत हासिल करने की कोशिश
कर। इस वक्त मैं कर ही क्या सकता हूँ, वो तो 40 साल पहले मर चुके हैं। आपने फरमाया था जब तक जिंदा हूं उनसे नहीं मिल सकता। ये बताओ तुम मुझे कहीं बरजख में वापस तो नहीं भेजना चाहते?
कोई और रास्ता भी नहीं है।
वो एक बार जाना ही मेरी 7 पुश्तों के लिए काफी था। मेरी खातिर अगर मेरी मदद ही करना चाहते हो, मेरी तरफ से वास्ता बनकर जाओ, उनकी रिजायत ले लो।
नहीं हो सकता हाजी, मैं कई बार कह चुका हूँ, अपने इख्तियारात के दायरे में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बस।
बहुत शुक्रिया। मुझे जहन्नुम में डालना चाहते हो, वसादत भी नहीं करना चाहते और फिर मुझे छोड़कर चले जाओ? अभी तो मैं गुदर्ज की रिजायत भी नहीं ले पाया हूँ। अगर उन्होंने रिजायत नहीं दी तो अब तक तो कोई मेरी मदद नहीं की, ऊपर से कहते हो कि मदद करने आया हूं।
तुम्हारे माँ बाप के सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकता, ये गिरा तुमने अपनी जिंदगी में लगाई है और तुम ही इसे हल करो। लेकिन गुदर्ज के सिलसिले में चूंकि तुम ज्यादा इसमें कसूरवार नहीं हो, शायद तुम्हारी मदद कर सकूं।
वाकई तुम उसकी रिजायत ले सकते हो? तुम अगर गुदर्ज की रिजायत ले सकते थे तो मुझे क्यों बरजख तक ले गए?
मैंने कब कहा कि मैं जाकर उसकी रिजायत ले लूंगा?
तो फिर मेरे साथ क्या करना चाहते हो?
मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा रास्ता खोलूं कि गुदर्ज की बीवी अपने हक तक पहुंच सके, इस तरह शायद उसकी रिजायत भी मिल जाए। लेकिन मैं पहले ही बता दूंगा जी, सिर्फ एक हिस्सा मेरे हाथ में है और दूसरा हिस्सा तुम्हारे अजीजों के हाथ में है कि तुम्हारे लिए क्या करते हैं।
समझ में नहीं आ रहा तुम आखिर करना क्या चाहते हो।
चलो साथ में गुदर्ज क्या चलते हैं, कुछ चीजें अपनी आंखों से देखो तो बेहतर है।
नरगिस यहां काम करती है?
हाँ, और भी बहुत से घरों में। गुदर्ज ने तो तुमसे कहा ही था।
और वो तो परी है, मेहताज की ममानी।
दुनिया छोटी है अजय।
मेहताज से?
तुम्हारे बारे में?
मेरे बारे में बात कर रही है?
तो इसका नतीजा क्या होगा, कब तक ऐसा चलता रहेगा?
पता नहीं परी, क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है लेकिन अम्मी इजाजत नहीं दे रही हैं कि मशीन हटाएं।
वो फटवाने देती बेचारे बूढ़े को भी सुकून मिल जाता।
मैं क्या बताऊं, चूंकि एक अम्मी है और हाजी की जान, उनकी उम्मीद है कि शायद वो ठीक हो जाए और मौजूद के इंतजार में है।
अच्छा, वैसे भी अगर इस वक्त ना मरते तो वक्त तो आ ही चुका था। और खुसरो क्या कहते हैं?
खुसरो तो उनसे भी बदतर है। तुम समझती हो उनकी हालत ठीक है? जब से ये दिल डोनेट करने की बात आई है तो और भी परेशान रहने लगे हैं।
वैसे अच्छा मौका है, उनको मनाने की कोशिश करो।
लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ, कहूँ कि अपनी अम्मी को तैयार करो कि अपने बाप की मौत को कबूल कर ले, कहूँ कि राजी हो जाओ कि तुम्हारे बाप के दिल को डोनेट कर दिया जाए। एक मिनट होल्ड करना। तो मेहताब कहाँ? तुम तो कह रही थी कि आज क्लास नहीं है।
हॉस्पिटल जा रही हूँ, उसके बाद दादी जान को भी एक चक्कर लगाऊंगी।
हॉस्पिटल किस लिए? तुम्हारे दादा कुछ सुन तो नहीं पाएंगे?
जो भी हो, दादी जान को भी आपका सलाम पहुँचा दूंगी।
ठीक है, लेकिन अगर अम्मी जान के घर गई और वो लड़का वहाँ हुआ तो क्या करोगी?
प्लीज अम्मी, अभी इन सब बातों का वक्त है क्या?
जल्दी वापस आना।
हाँ तो इसका नतीजा?
आज महताब को नरगिस से मिलना बहुत जरूरी है।
महताब को? लेकिन महताब तो नरगिस को नहीं जानती, उसे इस बारे में क्या पता होगा?
इसीलिए तो और मिलना चाहिए, उसे जानना चाहिए, शायद तुम्हारी ये पोती तुम्हारे लिए कुछ कर सके। आजी कुछ मिनट बाद नरगिस परी के घर से निकलने वाली है।
क्या कह रही थी?
मैं क्या बताऊं, मैं तो कहती हूँ खुसरो को राजी कर लो, ऐसे वो बूढ़ा भी सुकून पा जाएगा और तुम्हारी अम्मी जान को भी सवाब मिलेगा, वो तो इन चीजों पर एतकाद रखती हैं।
नहीं हो सकता परी, कहना इतना आसान भी नहीं है। कल बाबा के यहाँ जब ये बात छेड़ी तो अम्मी जान बेहोश हो गई थी, इस वक्त बात करना मुनासिब नहीं है। और हाँ, अगर खुदा ना खासा अम्मी जान को कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे?
अब मैं क्या कह सकती हूँ, अफशीन अगले महीने वापस लौट रहा है, फोन किया था अपना फैसला करवाने के लिए, अब क्या करना चाहिए, आए या ना आए? अब तो इन दोनों के बारे में कुछ सोचना चाहिए।
इसी उम्मीद पर रहना, मगर ये कि खुदा ना खास्ता अगर मैं मर गया, मतलब ये कि मशीनें निकाल दी जाए।
लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल इस बारे में खुसरो से बात नहीं कर सकती, कुछ दिन गुजर जाने दो, थोड़ा बहुत खुसरो संभल जाए तो मैं ये बात कहूंगी।
ठीक है ठीक, तो फिर बताना, लेकिन याद रहे कि अफशीन के पास ज्यादा वक्त नहीं होगा।
ठीक है, तुम्हें इत्तला दूंगी।
चलो रखती हूँ,
खुदा हाफिज़।
निकाल दो, बूढ़ा खत्म तो हो जाए।
मैडम मेरा काम पूरा हो गया, अगर कोई काम ना हो तो मैं चलूं?
नहीं, जा सकती हूँ। अगला जुमरात याद है ना तुमको, मेहमान आने वाले हैं, ये भी लेती जाना, अपने बच्चों को खिला देना।
बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बच्चे ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। शुक्रिया मैडम, खुदा हाफिज़।
उफ़, आज के नौकर भी क्या ड्रामा करते हैं।
ये बताओ हम यहाँ क्या करने आए हैं?
आजी, ये तुम्हारी जल्दबाजियों की आदत अब खत्म होगी।
पहले जब आपको देखा था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आप हैं। आप कहाँ और यहाँ?
असल में काम के लिए आई थी, वापस जा रही थी कि बस इतने में ख़राब हो गई और फिर किसी सूरत स्टार्ट ही नहीं हुई।
क्या आप इधर ही काम करती हैं?
कोई रास्ता भी तो नहीं है, उस मरहूम के बाद इस ज़िंदगी को किसी सूरत चलाना ही है।
बेचारे गुजर्स मरहूम, बहुत अच्छा दोस्त था, इतनी जल्दी उसे नहीं मरना चाहिए था।
खुदा आपके मरहूमी की भी मगफरत करे।
खुदा सब की मगफरत करे।
अच्छा, वो मुश्किल आपकी हल हुई?
नहीं भाई, अगर हल हो गई होती तो इस खटारा के साथ थोड़ी काम करता। खुदा ना करे कोई इंसान किसी ऐसे आदमी के चक्कर में फंसे। वह मुरव्वत मुसरमस ने मुझे तमाचा मार कर निकाल दिया, मेरी रोजी रोटी भी छीन ली।
तो क्यों नहीं हाजी सुल्तानी के पास गए? सुना है अच्छे आदमी हैं।
उनके पास भी गया था, मुझे सरमस ही के पास भेज दिया और एक वादा भी किया था, लेकिन मेरी बदकस्मती से वो खुद ही मौत के शिकार हो गए हैं।
मर गए? हाजी सुल्तानी मर गए?
आपको नहीं मालूम क्या?
नहीं, मैं तो अभी एक आध दिन पहले इनसे मिलने गई थी, लेकिन वो कहीं निकले हुए थे।
गालिबान परसों ही एक्सीडेंट हुआ है, मैंने भी कल सुना है। सुना है कि ब्रेन हेमरेज हो गया है, अब वो जिंदा नहीं बच सकते।
लेकिन कैसे मुमकिन है?
इंसान ऐसा ही है, अभी है लेकिन 5 मिनट बाद तुम्हारे लिए फातिहा पढ़ा जा रहा है। आप उनके पास किस लिए गई थी?
मैं फैक्ट्री गई थी काम के लिए, सरमस ने वादा किया है कि इस नई शॉपिंग सेंटर में मुझे काम देंगे।
आप भी ना, कितनी सीधी हैं, सरमस और किसी की भलाई, वो हमारे लिए कभी कुछ करेगा? हाजी के पास ही जाना चाहिए था, लेकिन उसका भी अब कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त तो हाजी भी इस दुनिया में नहीं रहे। कैसी मदद, कैसा शॉपिंग सेंटर।
मैं अगर ना रहूं तो अपनी नानी को एक दवा भी नहीं दे सकते। हाँ, सो जाइए अम्मी। फिर अपना मोजा फाड़ दिया। सुमैया मेरी बेटी, मैं बाहर जा रही हूँ।
ए, कहाँ जा रही है मम्मी? अभी तो आप आई थी।
मैं कहाँ जा सकती हूँ, अपनी मुसीबत के चक्कर में जा रही हूँ और कहाँ।
कहाँ चली गई?
सरमस्त के पास गई है।
सरमस्त?
अरे उस बूढ़ी औरत की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल जाके क्या करेगी? नहीं भाई, जैसी हालत तुम्हारी अम्मी जान की है उसमें इस तरह की बातें बिल्कुल मुमकिन है, कोई अच्छी बात नहीं। हाँ तो फिर तुम वहाँ क्या कर रही हो आखिर? अगर हॉस्पिटल में कुछ होगा तो लोग फोन करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है भाई ठीक है, तुम अम्मी जान को हॉस्पिटल जाने से रोको, मैं खुद ही एक चक्कर लगाऊंगा वहां जाके। ठीक है भाई, खुदा हाफिज।
सलामुअलैकुम। सलाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
नानी जान से मिलने आया था। क्या हुआ है?
पता नहीं, शायद कोई ख्वाब आप देखा है, पीछे पड़ी है कि हॉस्पिटल ले चलो मुझे बाबा के पास। आओ बेटा, पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता क्या करूँ, मैं तो उनके आगे कुछ बोल नहीं सकती। अरे अम्मी,
मेरी बेटी सीमा, फोन करो टैक्सी को, मुझे अस्पताल जाना है। दिल नहीं मानता, मैं अस्पताल जा के रहूंगी।
मेरी अम्मी कुर्बान जाओ, मैं आप इस तबीयत में कहाँ जाना चाह रही हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं हाजी को देखना चाह रही हूँ। मेरे ख्याल में कुछ हुआ जरूर है, तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो।
हमसे कुछ भी नहीं हुआ है, मनु चहर अभी हॉस्पिटल में है, कुछ हुआ होता तो वो जरूर हमें फोन करके बताते।
बेटा मुझे हाजी को देखना है, उनको ख्वाब में देखा है, मुझे पुकार रहे थे, यकीन करो।
मेरी अम्मी शाम को ले जाएंगे हम आपको साथ।
सासन बेटा फोन करो टैक्सी को, टैक्सी आ जाए, मैं तुमसे इल्तिजा कर रही हूँ।
खुदा खासा वहाँ जाकर कुछ हो गया तो?
कसम से मेरी तबीयत ठीक है, मैं हाजी को देख के और बेहतर हो जाऊंगी। तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो?
नहीं अम्मी, हम क्या छुपा रहे हैं, भला मैं आपको खुद लेके जाऊंगी। ठीक है,
कल भी यही कहा था तुमने, लेकिन नहीं ले गई। उन्हें कुछ हुआ जरूर है।
कसम से उनको कुछ नहीं हुआ है अम्मी जान।
झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मुझसे तुम लोग झूठ बोल रहे हो।
मैं अभी हॉस्पिटल जाता हूँ और सबसे पहली खबर जो होगी मैं कसम से आपको आगे बताऊंगा, मैं आकर आपको लेके जाऊंगा। ठीक है?
झूठ बोल रहे हो।
कसम खा रहा हूँ भाई।
बेटा जाओ, ताकि इतना परेशान ना हो, जाओ जल्दी फोन कर देना हमें। ठीक है? आप और कुर्बान क्यों इतना परेशान होती, आखिर क्यों अपने साथ ऐसा कर रही हैं?
अगर इस शर्मस ने इस बंदे खुदा को देख कर कोई झूठ वूट बनाया और वापस कर दिया तो क्या होगा?
ऐ सबर देने वाले,
क्या बरवक छींक थी। अच्छा आप तो कुछ भी कर सकते हैं, ये छींक सरमस की नाक में नहीं डाल सकते थे आप?
लेकिन क्यों?
ताकि दिमाग भटक जाए और उसका एक्सीडेंट हो जाए, अलबत्ता मरने ना पाए वो। इसमें मेरा ही नुकसान है क्योंकि मेरी बेटी और बच्चे लावारिस हो जाएंगे। मैं चाह रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो जाए और हॉस्पिटल पहुंच जाए ताकि उसे इबरत हासिल करे, अपनी सेहत की कदर करे।
किसके साथ क्या होता है वो मेरे हाथ में नहीं है, खुदा क्या।
कैसे नरगिस साहिबा की छींक आपके हाथ में थी?
वो भी अल्लाह की मर्जी से थी। खुदावंद आलम ने सिर्फ उसी गरीब बच्चों की किफालत जो तुमने 3 साल की है उसके सवाब में यूं मुकर्रर किया है कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि महताब नरगिस से मिल सके और समझ सके कि सरमस ने कितनी बड़ी टोपी उन्हें पहनाई है। और इसके बाद सारी उम्मीदें तुम्हारी पोती महताब से है कि नरगिस के लिए कुछ करे और उसका हक सरमस से ले के दे। शायद गुदर्स भी तुम्हें माफ़ कर दे और तुमको सुकून मिल जाए।
अब आप इन दोनों को कैसे मिलाएंगे? महताब और नरगिस की बात कर रहा हूँ।
थोड़ा सा से काम लो, तुम तो जानते हो कि जल्दबाजी किसका काम है।
हाँ हाँ जानता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, ये बताइए वाकई हाजी का एक्सीडेंट हुआ है?
जी बहन जी, आज तो वो 2-3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब जिंदा बचेंगे कि नहीं वो तो खुदा ही जानता है।
और सरमस साहब, क्या इनसे 1 मिनट मिल सकती हूँ?
सरमस साहब वो तो अभी भी तो निकले हैं, गाड़ी नहीं देखी क्या उनकी?
नहीं समझी नहीं, कब लौटेंगे?
1 मिनट रुकिए, सेक्रेटरी से पूछता हूँ, पहला वजह इंतजार ना करना पड़े आपको। सलामुअलैकुम, आपको पता है सरमस साहब कब लौटेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं कि हॉस्पिटल गए हैं, वापसी का भी कोई भरोसा नहीं है। कहीं तो हॉस्पिटल का एड्रेस दे दूं, आप वहीं चले जाइए।
بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
इस कमरे में मुझे कितना सुकून मिलता है।
العظام حادا والجبال أوتادا وخلقناكم ازواجا.
وہ خدا کے کلام کی وجہ سے جو تمہاری پوتی تلاوت کر رہی ہے۔
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به الحب ونباتا وجنات الألفاف إن يوم
इसका पर्स क्यों गिराया?
जल्दी मत करो।
अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम।
कोई खास बात है क्या?
नहीं बस जरा नानी जान से मिलने गया था।
हाँ तो
उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
क्या हुआ है? यहाँ आके क्या करेंगी? अगर दादा जान को इस हालत में देख लिया तो
क्या पता, कोई ख्वाब देखा है, पीछे पड़ी है कि दादा जान से मिलना चाह रही हैं। अच्छा हाँ, जब तुम यहाँ पर हो तुम चलो उनसे बात कर लो, तुम्हारी बात जल्दी मान लेती हैं।
डॉक्टर कलमी ऑपरेशन
इत्तेफाक से मुझे भी उनके पास जाना था। ठीक है,
अरे ये तो नरगिस है ना, ये तो चले गए, एक दूसरे को पहचाना भी नहीं, जल्दी कुछ करो।
फिर वही जल्दबाजी हाजी।
एक मिनट रुकना।
क्यों?
मेरे ख्याल से अपना कुरान भूल गई, रुक जाओ।
तो बाद में ले लेना।
एक मिनट बस।
हम सिर्फ और सिर्फ खास रिश्तेदारों को आईसीयू में जाने दे सकते हैं।
मैं इस कमरे में नहीं जाना चाह रही हूँ, सिर्फ उनके किसी अजीज से एक मिनट मिलना चाह रही थी।
मैंने कहा तो मैडम, नहीं हो सकता, हम उसके जिम्मेदार हैं।
जनाब खुदा के वास्ते, मैं बहुत दूर से आई हूँ, बहुत दूर से, सिर्फ कुछ मिनट, सिर्फ कुछ मिनट।
वो देखिए, वो उनकी पोती है।
मैडम, अस्सलाम वालेकुम मैडम
जी।
क्या आप हाजी सुल्तानी की पोती हैं?
हाँ जी, फरमाइए।
माफ़ कीजिएगा, शर्मिंदा हूँ, मुझे मालूम है आपकी हालत इस वक्त ठीक नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन कुछ देर आपसे बात करना चाह रही थी।
आपको जानती भी नहीं, आपके लिए क्या कर सकती हूँ?
जी जानती हूँ, मैं भी सरमद साहब से बात करना चाह रही थी, मुझसे कहा था यहाँ आए हैं, ये तो बस खुदा की मर्जी थी जो आप आ गई, इसलिए मैंने सोचा आप ही से ख्वाहिश करूँ, शायद आप ही मेरी मदद कर सकें।
आप मेरे दादा की फैक्ट्री में काम करती हैं?
मैं नहीं, मेरे शौहर काम किया करते थे, 6 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हुआ और वो इंतकाल कर गए।
ओह खुदा उनकी मगफरत करे, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ?
अगर कुछ देर मुझे मौका दें तो बताती हूँ।
लेकिन मुझे,
खुदा के वास्ते मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा के वास्ते।
मेरी बेटी इसकी बात सुनो, मेहताब तुम मुझे देख सकती हो?
ठीक है, चलिए बाहर चलते हैं, बाहर ही बात करते हैं, चलिए।
जी फरमाइए।
सरमद साहब बोल रहे हैं?
जी मैं ही बोल रहा हूँ।
मैं कामयाब बोल रहा हूँ, मुझे पहचाना आपने?
माफ कीजिएगा कामयाब साहब, मैं पहचान नहीं पाया।
मैं सुल्तानी साहब का वकील हूँ।
जी हाँ कामयाब साहब, जी फरमाइए।
ये खबर सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, ऐसे हालात पेश आने के बाद उनके घर वालों से मिलना चाह रहा था।
माफ कीजिएगा, किस सिलसिले में?
हाजिर होकर बताऊंगा। मैंने उनके बेटे खुसरू साहब से भी गुजारिश की थी कि मेरे ऑफिस में तशरीफ लाएं, और साथ ही आपसे भी गुजारिश है कि उस जलसे में तशरीफ लाइएगा।
जरूर जरूर, कब आना होगा मुझे? माफ कीजिएगा, अपना एड्रेस लिखवा देंगे आप मुझे?
जी हाँ लिखिए।
अगर मैं अकेली होती तो हर मुसीबत बर्दाश्त कर लेती, लेकिन 3 छोटे बच्चों का पेट कैसे भर सकती हूँ? जाकर भीख मांगूं और हर हैरगर के सामने हाथ फैलाऊं? खुदा की कसम इस वक्त भी दूसरों के यहाँ नौकरी करती हूँ।
इसका मतलब है कि आपके शौहर तलबगार थे, कुछ पैसे देने को रह गए क्या?
मुझे इनके हिसाब किताब के बारे में इतला नहीं है, मैं अपने तलब के सिलसिले में नहीं आई हूँ। इनके इंतकाल के 1-2 हफ्ते बाद सरमद साहब ने आकर मुझे 1 लाख तुमन दिया कि जिससे अपना खर्चा चलाऊं। मैं इस 1 लाख तुमन से क्या कर सकती थी? मैंने कहा इस फैक्ट्री में कोई काम ही दे दीजिए, कम से कम जब मेरे शौहर का आपकी फैक्ट्री में इंतकाल हुआ है तो मुझे इनकी जगह कोई काम दे दीजिए। सरमद साहब ने कहा अभी यहाँ खुद ही कारीगर बहुत हैं, कहने लगे वो शॉपिंग सेंटर खोलने दो, मैं ही इसका सब कुछ हूँ, कोई काम दिला दूंगा। लेकिन अब इस हादसे के बाद जो हाजी के साथ पेश आया है, पता नहीं कब वो शॉपिंग सेंटर खुलेगा। खुदा की कसम फैक्ट्री में जो काम हो मैं करूँगी, साफ सफाई का भी काम कर सकती हूँ।
ठीक है, मैं खुद सरमद साहब से बात करती हूँ, देखूँ आपके लिए क्या कर सकती हूँ। आप बस अपना एड्रेस वगैरह मुझे दे दीजिए, मैं खुद आ जाऊँगी।
खुदा आपको जजाय खैर दे, खुदा आपको हर मैदान में कामयाब करे।
आसान बैठोगे?
तुम्हें उसकी बातों पर यकीन है?
वो झूठ क्यों बोलेगी?
कैसे पता वो सच बोल रही थी? मेरा मतलब है शॉपिंग सेंटर वगैरह। और हाँ, याद रहे मेरे बाबा किसी गैर से ये नहीं कहेंगे कि मैं वहाँ का सब कुछ हूँ।
एक मिनट। हेलो, सलाम अलैकुम मोइनी साहिबा, मैं ताब बोल रही हूँ। शुक्रिया। नहीं, अभी वैसे ही हैं। सरमद साहब कहाँ हैं? अच्छा, वो अभी कहाँ मिलेंगे? असल में उनसे बस कुछ सवालात गुजर साहब के मामले में पूछना था।
वही ड्राइवर की बात कर रही है ना? नहीं, जहाँ तक मुझे मालूम है कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ तक कि हाजी ने 1 मिलियन का एक चेक भी उनकी फैमिली वालों को दिया था मदद के लिए। जी, मुझे यकीन है, मैंने खुद वो चेक सरमद साहब को दिया था। और ये भी बात हुई थी कि माहाना कुछ रकम उनके खर्चे के लिए उनके घर वालों को दी जाएगी। जी, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती, सरमद साहब से पूछिए तो बेहतर होगा। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, खुदा हाफिज़।
देखा, मैंने कहा था ना हर किसी की बात नहीं सुननी चाहिए।
अरे वो क्यों झूठ बोलेगी?
उसकी वजह तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं सिर्फ जानता हूँ कि तुम बदली जा रही हो।
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम सलाम।
मैं सरमस्त हूँ, कामयाब साहब ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था, उनके साथ अपॉइंटमेंट है।
ठीक है, आप एक मिनट रुकिए।
शुक्रिया।
सरमस्त साहब, खुश आमदीद। मुझे पहचाना आपने?
जी हाँ, अलबत्ता काफ़ी वक्त हो गया आपसे मिले हुए।
जी हाँ, अक्सर मौक़ों पर सुल्तानी साहब मुझे इज्जत बख्शते थे। मुझे अफसोस है कि इस बार इस अंदाज़ में मुलाकात हो रही है आपसे। बहुत अफसोस है कि मेरे लिए इसका मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या किया जा सकता है, अब ज़िंदगी ने किसी के साथ क्या वफा की है। तशरीफ़ रखिए।
अखा खुसरो साहब।
अस्सलाम वालेकुम सरमस्त, कैसे हो?
तशरीफ़ रखिए। बहुत बहुत खुश आमदी सरमस्त साहब। जैसा कि मैंने अर्ज किया था और खुसरू साहब की खिदमत भी अर्ज कर चुका हूँ, मैं सुल्तानी साहब की वकालत के उमूर अंजाम दे रहा हूँ। अलबत्ता बाज़ मसाइल वो हैं जिनके बारे में आपसे गुफ्तगू करना है, और ये हिस्सा मरहूम की ज़िंदगी के बाद का मामला है कि गालिबन इस वक्त इसी दौर से हम गुज़र रहे हैं, और इस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में ताज़ियत अर्ज करता हूँ।
आपके कहने का मतलब वसीयतनामा है?
हाजी साहब ने कुछ दिन पहले एक वसीयत नामा तैयार किया था, जिसके तहत मुझ पर कानूनी तौर पर फ़र्ज़ है कि उनके इंतकाल के बाद और आप लोगों के बेहतर हुई हालात के बाद और आप लोगों के थोड़ा संभलने के बाद सबके सामने इस वसीयत नामे को पढ़ूं।
तो बाबा जान का वसीयत नामा आपके पास है?
क्यों, कहीं और की उम्मीद थी आपको?
नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन असल में हम भी उसी की तलाश में थे कि बाबा जान ने क्या कोई वसीयतनामा लिखा है या नहीं, कि जिसके तहत हम समझ सकें कि क्या उन्होंने अपने आज़ाए बदन को हदिया देने की इजाज़त दी है या नहीं, हमें अपनी ज़िम्मेदारी का पता चल जाए। कामयाब साहब, आप इस वक्त हमारे हालात को बिल्कुल नहीं समझ सकते।
کیوں نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں خسرو صاحب، البتہ اگر حاجی صاحب نے ایسا فیصلہ کیا ہوتا تو غالباً اسے وصیت نامے میں ذکر نہیں کریں گے، چونکہ عام طور پر وصیت نامہ تدفین کے کچھ دن کے بعد پڑھا جاتا ہے۔
جی ایسا ہی ہے، ہم بھی اسی کی تلاش میں تھے، لیکن مجھے واقعی نہیں معلوم تھا کہ بابا نے کوئی وصیت نامہ بھی لکھا ہے۔
مہتاب کا فون ہے۔
مہتاب؟ کیا ہوا ہوگا، اٹھاتے کیوں نہیں؟ شاید امی جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہو۔
ہاں مہتاب بیٹا بولیے۔ اچھا امی جان کو کچھ ہو گیا ہے کیا؟ کیا وہ ہاسپٹل میں کیا کرنے آئی تھی؟ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ یہ لیجیے، ابھی کچھ ہوا بھی نہیں، مفت خور اور بھکاری پیسہ مانگنے آ گئے۔
کیا ہوا؟
ایک بندہ خدا کبھی ہمارے لیے کام کرتا تھا، وہ بھی پارٹ ٹائم، اس کی بیوی کو ہم نے کام دینے کا وعدہ کیا تھا، جیسے ہی سنا کہ حاجی کی طبیعت خراب ہے تو مہتاب بیٹی کی مہربانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر ممکن کوشش کی کہ کچھ پیسے اس کو مل جائیں، جبکہ میں حاجی کے حساب کتاب کے بارے میں پوری طرح جانتا ہوں، ان کا پورا حساب کتاب صاف ہے، ایک پیسہ بھی ادھر ادھر نہیں کرتے، میں ان کے پورے حساب کتاب سے واقف ہوں۔ اب کل کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے، کیا چاہے اور کیا نہ چاہے، وہ تو خدا ہی بہتر جانے۔
بہرحال اگر حاجی طلبگار یا قرض دار بھی ہوں تو وصیت نامے میں اس کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ اب جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور ان کی زندگی سے قطع امید کر چکے ہیں، تو پھر اگر اس وصیت نامے کو پڑھا جائے تو
اس موضوع کے بارے میں کہ انہوں نے وصیت نامے میں کیا لکھا کیا نہیں لکھا، میں اس وقت قانونی اور شرعی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، سب کے سامنے ہی بتاؤں گا، اور وصیت نامہ اسی وقت کھولا جائے گا جب حاجی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔
اب تو بابا جان،
جی مجھے معلوم ہے، لیکن میں قانونی طور پر اس وقت وصیت نامہ نہیں پڑھ سکتا، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، حاجی صاحب تو ابھی زندہ ہیں نا۔
نہیں بھائی، کیسی بات کر رہے ہو، برین ہیمریج والا کہاں ٹھیک ہوتا ہے؟
مجھے بہت افسوس ہوا، جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ جب امیر سسر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے داماد کو مبارکباد دینی چاہیے یا تعزیت۔
فی الحال تو بس مصیبت ہی جھیل رہے ہیں ہم لوگ۔
فی الحال کو چھوڑو، دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا چھوڑتے ہیں۔ بس
اتفاق سے میں نے اسی لیے تمہیں ڈسٹرب کیا ہے۔
ارے شیطان، اسی لیے میں کہوں مجھے کہاں سے یاد کر لیا۔ اچھا بولو تو صحیح،
میں ابھی حاجی کے وکیل کے دفتر سے آ رہا ہوں، کہہ رہا تھا کہ ایک وصیت نامہ انہوں نے لکھوا کے اس کے پاس رکھا ہے، لیکن کہہ رہا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہے اسے کھولا نہیں جا سکتا، کیا واقعی اسے کوئی قانون ہے؟
ہاں ٹھیک کہا ہے۔
کیا مطلب ٹھیک کہا ہے کو چھوڑو، مجھے فیکٹری بچانا ہے، تم جانتے ہو کہ کتنے ایگریمنٹ ہیں، وہ بھی تو پورے کرنے ہیں، دو دن اگر ایسا ہی رہا تو پھر فیکٹری بند ہو جائے گی۔ میں نے تمہیں جو اس ملک کے ٹاپ لیول کے وکیل ہو اسی لیے فون کیا ہے کہ کوئی قانونی راستہ نکالو، شاید اس وصیت نامہ کو کھول سکیں ہم۔ کیا تم اس وکیل سے بات کر سکتے ہو، اسے راضی کرو کہ حاجی کی زندگی میں ہی ہم وصیت نامے کو کھول سکیں تاکہ ہم سب کو اس پریشانی سے نجات مل جائے؟
ویسے قانونی طور پہ ایک ہی راستہ ہے، اس کا نام کیا بتایا؟
کیا پتا، ہاں ہوشنگ کامیاب، ایک نہایت گھٹیا آدمی، کوئی بات ہی نہیں کر سکتا اس سے۔
کامیاب؟ تمہیں یقین ہے؟
ہاں ابھی تو اس کے آفس آ رہے ہیں ہم لوگ، پہچانتے ہو؟
بہت اچھی طرح۔
واقعی؟
اس کے پاس وکالت کے قانونی پیپر نہیں ہے۔
کیا مذاق تو نہیں کر رہا ہو؟
تمہاری جان کی قسم، اس کے قانونی پیپر دو سال پہلے کچھ غلطیوں کی وجہ سے باطل ہو گئے ہیں، وہ خلا کی کمیٹی کا ممبر بھی نہیں ہے۔
کیا بات ہے، تو پھر یہ سب وصیت نامہ یہ سب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نا؟
نہیں، اگر وصیت نامہ پچھلے دو سال کے درمیان نہیں لکھا گیا ہو تو قانوناً وہ وکیل رہا ہے، اور اس صورت میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت اس کے پاس قانونی پیپر تھے۔
تو پھر جب تک حاجی زندہ ہے اس وصیت نامے کو کھولنے اور پڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہے نا؟
نہیں، یہ بات تم نے بالکل ٹھیک کہی۔
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟
تم سمجھ رہے تھے ایک جھوٹ سے کسی کو بیوقوف بنا کر نکل لو گے؟ ہاں
مہتاب چاہ رہے تھے کہ جس موضوع پر فون بات ہوئی آپ سے بات کرے.
میں لڑکیوں کی اس مہربانیوں سے تو عاجز ہوں بھائی. چلو میرے کمرے میں, یہاں نہیں ہوگا. مبینی صاحبہ, اگر کسی نے فون کیا تو کہوں میں نہیں ہوں, لیکن اگر کوئی آئے تو پھر یہاں بٹھا لینا. آج میں بہت خوش ہوں کہ تم دونوں کے ایک ساتھ دیکھ رہا ہوں. با خدا میں سچ بول,
ہاں تمہاری جان کی قسم خوشی سے مرے جا رہے تھے.
میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے تم دونوں ساتھ میں ہو, لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ آج حساب کتاب دینا پڑے گا مجھے.
پلیز ایسا نہ کہیں, میں تو صرف تھوڑا کنفیوز تھی, آئی تھی.
نہیں میں نے مذاق کیا بیٹا, پریشان نہ ہو. میں جب تک یہاں ہوں حاجی کو ایک پائی کا بھی مقروض نہیں رہنے دوں گا. مجھے معلوم ہے کہ تم پریشان ہو, لیکن یقین کرو میں ان کو قرض دار نہیں بناؤں.
دیکھو تو صحیح کتنا معصوم,
ایک ایک پائی کا حساب کر دوں گا.
خدا تمہیں غارت کرے سرمست.
کہنا ہے کہ آپ نے ایک ہی ملین دادا کی طرف سے دیا ہے, لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ایک لاکھ لیا. مجھے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا.
چونکہ تم سب کو اپنی طرح سیدھا سمجھتی ہو, چونکہ جھوٹ نہیں بولتی. لیکن زبان میں ہڈی تو ہوتی نہیں, گوشت کا ایک لوترا ہے, جدھر چاہو گھما دو گھوم جائے گی, جیسے چاہو ویسے کر دو.
تاکہ تم کو اس وقت سبق سکھاتی.
آپ کا مطلب
جی ہاں جھوٹ بول رہی ہے تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں تم کو لگتا ہے؟
اتفاق سے تم ہی صرف جھوٹ بول سکتے ہو بدبخت.
دیکھیے ہاں یہاں ہے, یہ اس کی رسید ہے. خود نرگس صاحبہ نے اپنی انگلیوں سے اس پر نشان لگایا ہے. پتا چلتا ہے کہ اس نے ایک ملین لیا ہے اور اس پر نشان لگایا ہے کہ اب اس کے شوہر کا کوئی حساب کتاب باقی نہیں ہے اور ہم اس کے کوئی مقروض نہیں ہیں. سب کچھ صاف ہو چکا ہے.
اور جیسے مبینی صاحبہ کہہ رہی تھیں, غالباً ہر ماہ کچھ رقم بھی ان کو دی جاتی تھی.
نہیں ایسا نہیں ہے, مبینی صاحبہ شاید اس بارے میں جھوٹ بول رہی ہیں.
نہیں ہے, میں نے کوئی رقم مہیا نہیں کی تھی. دیکھو کیسے آسانی سے جھوٹ بول رہا ہے, آپ بھی تو صرف دیکھے جا رہے ہیں. ارے یہ کھانسی وانسی یا کچھ اور اس کے گلے میں ڈال دو نا.
مجھے اجازت نہیں ہے کچھ بھی کروں.
اگر آپ نہیں کر سکتے میں تو کر سکتا ہوں.
کچھ چیزیں حاجی کے بارے میں جانتی لیکن کچھ چیزیں نہیں جانتی. وہ نہیں جانتی کہ میرے اور حاجی صاحب کے درمیان کیا گفتگو ہوئی. بے خبر ہے.
میں نے نہیں کہا تھا ہر ماہ ایک لاکھ اس کے پاس بھیجنا. ہاں نہیں کہا تھا, نہیں کہا تھا.
البتہ حاجی اپنی مہربانیوں کے تحت یہ کام کرنے والے تھے, لیکن میں نے منع کیا تھا. یعنی میں نے حاجی سے کہا کہ بجائے اس کے کہ انہیں پیسہ دیں ایک کام کرتے ہیں کہ انہیں کام دلا دیتے ہیں, مچھلی کی جگہ مچھلی پکڑنا سکھا دیتے ہیں. اس طرح میں نے سوچا کہ کہیں دوسرے کارگر کچھ غلط نہ سوچنے لگے. ایسے نہ ان کا نقصان ہوگا نہ ان کا نقصان ہوگا, خدا بھی راضی بندہ بھی راضی.
اتفاق سے وہ کہہ رہی تھی کہ نئے شاپنگ سینٹر میں آپ اس کو رکھنے والے ہیں.
اس لیے کہ مجھے اس کے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ترس آیا. میں کیا کروں, برداشت نہیں کر پایا.
مجھے پتا نہیں کیوں آخر اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہے وہ مجھ سے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت سیدھی ہیں بیٹا. آپ تقریباً سبھی جاننے لگے ہیں کہ حاجی صاحب کی کیا حالت اس وقت. اب بہت سے لوگ ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ مدعا لے کر آئیں گے تاکہ
تم ایسے دیکھتے رہو گے
ہو جائے آپ کی مہربانیوں کی وجہ سے. لیکن آپ حاجی صاحب کے قرض ورض کے بارے میں بے فکر رہیے, پریشان نہ ہوئی. میں آپ کے دادا جان کے حساب کتاب کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں, مجھے پوری اطلاع ہے. میں خدا نخواستہ ان کے کسی بھی حق الناس کا حق دینے سے انکار نہیں کروں گا. اس کو بھی جو تم دیکھ رہی ہو اپنی تیزی کے چکر میں اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارنا چاہتی ہے, اپنا کام خود خراب کرنا چاہتی ہے.
اچھا تو کیا آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے؟
میں تو راضی ہوں بیٹا, اپنے وعدہ پر قائم ہوں. لیکن اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہر کسی کے سامنے جا کر ہزاروں جھوٹ بولنا شروع کر دے, جو سمجھے وہ کہے.
شاید بیچاری کو کوئی ضرورت ہو نا.
ٹھیک ہے بیٹا, دیکھتا ہوں کیا کر سکتا ہوں. اور بھی کچھ کہنا ہے؟ جبکہ میں اس سے ناراض ہوں, لیکن ٹھیک ہے, دیکھتا ہوں کچھ کر سکتا ہوں یا نہیں. ٹھیک ہے, اب تو خوش ہونا.
چلو خدا کا شکر مشکل بھی حل ہو گئی, اب ہم بھی چلتے ہیں. اٹھو, نانی جان بھی انتظار کر رہی ہوں گی. چلو.
ہاں بیٹا اٹھو اٹھو, ابھی امی جان کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے, یہاں بیٹھ کر حساب کتاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
کچھ تو کرو, یہ تو سب برباد کر رہا ہے.
جلدی مت کرو حاجی, یہ مہتاب کے لیے بھی ایک الہی امتحان ہے.
امتحان کیسا, اس نے سب کو بیوقوف بنا دیا.
اس کا امتحان کہ کیا وہ بھی تمہاری طرح ہر ایرے غیرے پر بھروسہ کرتی ہے کہ نہیں.
پھوپھا جان.
جی.
آپ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟
جا بیٹا, کیسی ناراضگی, صرف تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بات پر یقین نہ کیا کرو, دھیان دو.
ضرور.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
इस लड़के को मुझसे हिसाब किताब लेने के लिए भेजा है क्या?